वही अंश जो कि अपनी टिमटिमाती हुई सुंदर आंखों से आस्था को ही टकटकी लगाए देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहना चाहता हूँ कि मम्मा, आप जहाँ भी जा रही हैं प्लीज़ अपना ध्यान रखना और ख़ुद को कुछ मत होने देना। अब आगे, अगर आपका बाल भी बांका हुआ तो मेरा डेविल डैडी मुझे नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं अंश ये सोचता हुआ उल्टे सीधे मुंह बना रहा था और आस्था उसकी क्यूटनेस देखकर उसके गालों को चूमकर बोली, मेरा प्यारा बच्चा, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना पूरा ख्याल रखेगा। तब अधिराज सिंह जी ने आस्था के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा, तुम लोग जाओ और खूब मौज मस्ती करो। इतना ये बोलकर उन्होंने आस्था को वहां से जाने का इशारा किया और आस्था जल्दी ही एंजल के साथ बाहर की ओर चल पड़ी थी। जैसे ही आस्था बाहर गई, उसने देखा कि एक साथ लाइन से कम 40 से 50 गाड़ियां खड़ी हुई थीं। इतनी सारी गाड़ियों को वहां देखकर आस्था एक पल के लिए हैरान हो गई और साथ ही साथ कितने सारे बॉडीगार्ड्स भी वहां थे। अब आस्था जैसे ही आगे जाने लगी, कितने सारे बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे चलने लगे थे। ये देखकर आस्था का माथा ठनका और वो एक गार्ड को गुस्से में घूरकर बोली, ये क्या बदतमीजी है, आप लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आस्था की बात सुनकर वो गार्ड एक दूसरे की शक्ल नासमझी में देखने लगे, क्योंकि उन्हें आस्था की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। इसलिए एंजल ने उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि वो लोग क्यों आस्था के पीछे पीछे आ रहे हैं। तब उन्होंने एंजल को बताया कि अविनाश सर ने उन्हें अपनी बहन की केयर करने के लिए उनके पीछे पीछे लगाया हुआ है और गौरी मैडम जहां भी जाएंगी गार्ड्स के साथ जाएंगी, सारी कार भी उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ जाएंगी। अब जैसे ही एंजल ने अपनी भाषा में आस्था को सारी बातें समझाईं, आस्था के चेहरा का रंग एकदम से फीका पड़ गया और वो तुरंत ही वहीं मेंशन के बाहर बनी एक बेंच पर बैठते हुए बोली, अब मुझे कहीं नहीं जाना। आस्था को यूं बैठते देखकर एंजल थोड़ी उलझन में पड़ गई और अगले ही पल वो उसके पास जाकर आश्चर्य से बोली, क्या बात है आस्था, क्या कोई परेशानी है? तुम अचानक से ऐसी क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें कहीं नहीं जाना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये बोलते हुए एंजल आस्था का माथा चेक करने लगी। तब आस्था ने मुंह बनाया और उसने सारे गार्ड्स और गाड़ियों को देखकर इशारा किया, भाभी, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए सुकून के पल बिताने के लिए आई हूँ। क्या आपको नहीं पता सिंघानिया मेंशन में कितनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है? मैं यहाँ भी वो सब टाइट सिक्योरिटी माहौल नहीं झेलना चाहती। मैं यहाँ नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ, आज़ादी से रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आई हूँ और मैं अरमान सिंघानिया की बीवी हूँ, ये बात इंडिया में भी कोई नहीं जानता, तो भला ऑस्ट्रेलिया में कोई कैसे जानेगा? मैं जानती हूँ कि भाई यहाँ के जाने माने रईसों में से एक है, लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे यहाँ नॉर्मल जिंदगी जीनी है और मुझे इस तरह के बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्द ही एंजल आस्था की बातों का मतलब साफ साफ समझ गई थी, इसलिए उसने तुरंत अविनाश को कॉल मिला दिया। अविनाश ये सब सुनकर एकदम से चौंक गया कि आस्था गार्ड्स या इतनी सारी गाड़ियों के साथ क्यों नहीं जाना चाहती है। अविनाश ने एक आह भरी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि आस्था कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है, अगर वो इस तरह की आज़ादी चाहती है तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तब अविनाश ने कुछ सोचते हुए एंजल से कहा, ठीक है, तुम लोग बिना सिक्योरिटी के जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आस्था का पूरा ख्याल रखोगी। सिक्योरिटी वाले भले ही आस्था के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके आसपास ज़रूर रहेंगे, वो भी उसे बिना बताए, ठीक है? जल्द ही अविनाश ने तुरंत अपने असिस्टेंट सनी को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया कि वो उसकी बहन की इनडायरेक्ट किस तरह से सिक्योरिटी करे। एंजल ने जैसे ही आस्था को बताया कि उसके भाई ने हाँ कर दी है कि वो बिना सिक्योरिटी के बाहर जा सकती है, तो ये सुनकर आस्था खुशी से उछल पड़ी और चहकते हुए बोली, थैंक गॉड। मुझे लगा था कि अरमान जी की तरह अविनाश भैया बोल देंगे कि शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉपिंग वाले खुद सामान लेकर घर पर आ जाएंगे। तब एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ किसी भी बात को लेकर कोई खतरा या परेशानी हो सकती है, और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ चलते हैं, एक काम करते हैं, मैं कार खुद ड्राइव करूंगी, हम दोनों ही कार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाएंगे, और वैसे भी वो कॉम्प्लेक्स तुम्हारा ही है जो तुम्हारे भाई ने 4 महीने पहले ही खरीदा था, याद है ना, तुमसे जो डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवाए थे। तब आस्था को याद आ गया कि अविनाश, सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान, यहाँ तक कि अरमान भी कुछ ना कुछ अंश के लिए खरीदते रहते थे और उन्हीं के लिए आस्था को कहीं ना कहीं सिग्नेचर करने पड़ते थे, हर जगह नॉमिनी आस्था ही हुआ करती थी। फिलहाल आस्था ने गहरी सांस ली और फिर जल्दी ही वो लोग शहर के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने मौजूद थे। आस्था एक्साइटेड होकर पूरे के पूरे शहर को अपनी आंखों में बसा रही थी। सब कुछ उसे बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग लग रहा था। कहीं पर भी गंदगी का नामो निशान नहीं था। वहां की सड़कें भी इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि आस्था का दिल कर रहा था कि वो यहीं कहीं चारपाई बिछा दे और सो जाए, क्योंकि वहां इतनी ठंडी सुकून भरी हवा चल रही थी। लेकिन कहीं भी आस्था को कुछ खास पेड़ पौधे, गीली मिट्टी, ये सब दिखाई नहीं दिए। तो अगले ही पल वो एंजल की ओर देखकर एकदम से सवाल पूछने लगी, भाभी यहाँ पर क्या पेड़ पौधे या मिट्टी नहीं है क्या? ये सवाल सुनकर अगले ही पल एंजल ने आश्चर्य से हंसते हुए जवाब दिया, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला कोई इस तरह से मिट्टी वगैरह अपने आसपास क्यों रखेगा? और पेड़ पौधों के लिए यहाँ पर अलग अलग जगह पर गार्डन बने हुए हैं, साथ ही थोड़ी दूरी पर एक जंगल भी है। अगर किसी को पेड़ पौधे या इस तरह का कोई नजारा देखना होता है तो लोग वहां चले जाते हैं। ये सुनकर आस्था थोड़ा सा भौचक्की रह गई और अविश्वास से बोली, ये शहर चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी ही महंगी महंगी बिल्डिंग्स एकदम चमकदार और बिना धूल मिट्टी का ही क्यों ना हो, लेकिन एंजल भाभी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो बात हमारे देश की मिट्टी में है वो मुझे नहीं लगता कहीं और है। हमारे देश की मिट्टी की खुशबू ही कुछ अलग है। जैसे ही आस्था ने आंखें बंद करके फीलिंग के साथ ये कहा तो उसकी बात सुनकर एंजल मुस्कुरा दी और एंजल तुरंत ही आस्था की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और वैसे भी मैं आपके गांव गई थी, शायद तुम्हें याद होगा। वाकई उस वक्त मैंने पहली बार देखा था कि प्रकृति क्या होती है, नेचुरल ब्यूटी क्या होती है। रियली रियली वंडरफुल एंड आई रियली लाइक इट। एंजल की बातें सुनकर आस्था और भी ज्यादा गर्व महसूस होने लगा और अब जल्दी ही वे दोनों बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ी थी। एंजल आस्था को देखकर एकदम से हंसी और आईब्रोज काते हुए सवालिया नजरों से देख के बोली, ऐसे आश्चर्य से क्या देख रही हो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही तुम्हारा है। फिलहाल मैं कार पार्क करके आती हूँ, तब तक तुम अंदर जाओ, ठीक है? इतना बोलकर उसने आस्था को अंदर जाने का इशारा किया। आस्था इतने बड़े मॉल को देखकर काफी खुश हो रही थी और इस बात से भी कि इतना बड़ा शॉपिंग मॉल उसके भाई ने उसके लिए खरीदा है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आस्था ने एक आह भरी और जल्दी ही अंदर जाने के लिए खुशी होकर अपने कदम बढ़ा दिए। खिलौने, कपड़े, जूते और भी काफी सारी जरूरी चीजें देखकर आस्था ने देर ना करते हुए प्रॉपर शॉपिंग ट्रॉली में सब चीजें लेना शुरू कर दी। लेकिन अब आस्था को इस तरह बेफिची से शॉपिंग करते हुए देख और बिना प्राइस चेक किए खरीदारी करते हुए देखकर सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं।
क्योंकि ज्यादातर लोग जब इतने एक्सपेंसिव जगह पर आते हैं तो सबसे पहले प्राइस वगैरह ही चेक करते हैं, लेकिन आस्था, जिसे ये बताया गया था कि ये सब कुछ उसका है तो वो जो मर्जी वो खरीद सकती थी, तो इसलिए उसने प्राइस चेक करना जरूरी नहीं समझा। वैसे भी जब से आस्था माँ बनी थी, अपने बेटे के मामले में वो कभी भी किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले प्राइस चेक नहीं करती थी। हालांकि अगर अपने लिए कोई रबर बैंड भी खरीदना होता तो उसकी प्राइस देख लिया करती थी, लेकिन अपने बेटे के मामले में वो पूरी तरह से दिल खोलकर शॉपिंग करती थी। आस्था को इतनी इंटरेस्ट से शॉपिंग करते हुए देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि यहाँ की एक ड्रेस की कीमत लाखों से शुरू होती थी। फिलहाल आस्था ने लगातार कई ड्रेस जो से पसंद आई अंश के लिए निकालकर रख ली। अब वहां की सेल्स गर्ल तुरंत ही आस्था को नीचे से ऊपर तक अजीब नजरों से देखने लगी और उसे घूरते हुए बेरुखी से बोली, हे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर, डू यू हैव मनी? उसने जल्दी ही आस्था को इंग्लिश में कई बातें क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आस्था अच्छी खासी इंग्लिश जानती थी, इसलिए उसने भी उसे इंग्लिश में जवाब दिया, आई एम हियर फॉर शॉपिंग। जब आस्था ने एक बार फिर बेहद प्यारा सा छोटा कोट पैंट, जो छोटे बच्चों का था, पसंद किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो उस लड़की की आंखें और भी ज्यादा फैल गई और वो हड़बड़ा गई, क्योंकि वो कोट पैंट शॉप के बच्चों के कपड़ों में सबसे महंगा था, जिसकी कीमत 50 लाख से शुरू थी। ये देखकर वो लड़की माथा ठनका और वो ऊंची आवाज में बोली, कौन हो तुम और तुम इस तरह यहाँ बेपरवाही से क्यों घूम रही हो? तुम्हारी औकात भी है इस ड्रेस को खरीदने की? तुम्हें पता भी है तुमने लगातार इतने सारे कपड़े खरीदे, क्या तुम्हें इनकी कीमत का अंदाजा है? पैसे भी हैं तुम्हारे पास? क्योंकि आस्था बिना पर्स के आई थी, उसके पास ना तो पर्स था और ना कुछ, और फोन के अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो लड़की आस्था को नीचे से लेकर ऊपर तक बेमन से देखने लगी और जल्दी से उसने अपने मैनेजर को फोन लगा दिया। उस मैनेजर के साथ साथ वहां पर बाकी के सभी कस्टमर भी रुक रुक कर आस्था को अजीब नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि ये कोई लड़की पागल है जो इस तरह से पैसे ना होने के बावजूद इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद रही है, तो सभी आस्था को भला बुरा कहने लगे थे। अब ये सब बकवास सुनकर तो आस्था की हालत खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन सबको शांत कैसे कराए और क्या जवाब दे। उसने इंग्लिश में उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि वो यहाँ की ओनर है तो वे उसे रिस्पेक्ट से बात करें। जैसे ही आस्था ने बातों ही बातों में ये बताया तो एक पल के लिए वहाँ शांति छा गई, लेकिन अगले ही पल सभी ठहाके लगाकर हंस दिए और मजाकिया मुस्कान से बोले, क्या ये मामूली सी लड़की यहाँ की ओनर हो सकती है? इम्पॉसिबल। इतना बोलकर उन्होंने आस्था को और भी ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उनकी बकवास सुनहर आस्था का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसे अपनी इस तरह की बेइज्जती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन वे लोग तो उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। तभी आस्था ने तुरंत अपना फोन निकाला और एंजल को फोन करने की कोशिश की, ताकि वो जल्दी से उसके पास आकर सबको उसकी आइडेंटिटी बता दे कि आखिर वो है कौन। लेकिन तभी एक लड़की आकर आस्था का फोन झट से उसे छीन लेती है और उसे लेकर जमीन पर पटक देती है। आस्था जब तक कुछ समझ पाती, तब तक उसका मोबाइल टूट चुका था। वो लड़की आस्था को घूरते हुए चिल्लाकर बोली, अपनी औकात में रहो, तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सा फोन लेकर तुम यहाँ शो ऑफ कर रही हो कि तुम अमीर हो? तुम्हारे कपड़े देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम या तो कहीं की भिखारी हो या फिर यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ आई हो। हम तुम्हारे जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानते हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। ये सुनकर आस्था का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उस लड़की द्वारा इतनी बेइज्जती करने पर और उसका फोन तोड़ देने के बाद आस्था का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए आगे बढ़कर उसने उस सेल्स गर्ल के मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ चिपका दिया। आस्था का थप्पड़ इतना दमदार था कि वो लड़की लड़खड़ाती हुई तुरंत नीचे गिर पड़ी और उसके होंठों के पास से खून निकलना शुरू हो गया। अब ये सीन देखकर उसका मैनेजर भी गुस्से में भड़क उठा। उसने सोचा, ये जरूर कोई क्रिमिनल है, चोरी करने के इरादे से यहाँ आई है। इसने हमारे स्टाफ पर हमला किया है, इसलिए अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर उसने तुरंत सभी सिक्योरिटी गार्ड को वहां बुला लिया। कम से कम 12 से 13 सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गए और उन्होंने आस्था को पकड़ लिया। ये देखकर आस्था की आंखों में आंसू आ गए। वो उन्हें लाख समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ की ओनर है और वो सब उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। लेकिन वे लोग तो आस्था की बात को पूरी तरह से अनसुना करके उसे कोई चोर समझ रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा था मैनेजर के दिमाग में और आगे क्या होगा आस्था और अरमान की इस कहानी में? दोस्तों, बिना कंजूसी करे लाइक शेयर कमेंट कर दो यार। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज मेरी बाकी की स्टोरी को भी ढेर सारा प्यार दे। और साथ ही साथ मैंने अपना यूट्यूब पर एक छोटा सा चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। प्लीज मेरी ऑब्सेस्ड अभी मेरे वहां पर एक ही स्टोरी डालने की शुरुआत की है। बहुत जल्द मैं वहां पर धीरे धीरे सारी स्टोरी ऑडियो में डालूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग अपना साथ बनाए रखेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्लीज जरूर कीजिएगा, केवल कुछ ही मिनट का काम है।